महोत्सव की श्री मधु पंडित तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की उपस्थित भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम इसका पहले उच्चारण करेंगे। उद्भव स्थित संहार कारणी क्लेशहारणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभां। उद्भव स्थित संहार कारणी क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभां। उद्भवस्थित संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभाम्। उद्भवस्थिते सिंहारकारणिम् क्लेशहारणिम् सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभाम्। उद्भवस्थिते संहार कारणिम् सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभाम्। उद्भवस्थिते संहार कारणिम् श्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभाम्। माताजी उद्भवस्थिते संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभाम्। उद्भवस्थिते संहारकारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभाम्। धन्यवाद। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीवैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् द्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अभी मॉर्निंग भागवत कक्षा में। और आज मधु पंडित जी, जो कि गौड़िया वैष्णव के एक बहुत प्रमुख आचार्य रहे हैं, उनका तिरोभाव तिथि है, तो उनके बारे में थोड़ा सा इस गौड़िया वैष्णव बुक से पढ़ेंगे। मधु पंडित जी, जो कि हम जानते हैं कि राधा गोपीनाथ विग्रह के, जो उन्होंने स्थापना करी थी वृंदावन में, और ये जो विग्रह है यमुना के तट, बंसीवट के तट पर जो जगह थी बंसीवट तट के पास, उस भूमि को खोदने के बाद इस विग्रह को निकाला गया था, गोपीनाथ जी के विग्रह को। और बहुत लंबे समय तक जो है मधु पंडित जी इस गोपीनाथ विग्रह की सेवा करते रहे। बाद में उन्होंने, जब वो थोड़े वृद्ध हो गए थे, तो सेवा उन्होंने वहाँ के लोकल जो ब्राह्मण थे गोस्वामी, उनको उन्होंने दे दिया था। और उसके बाद जो है ये बताते हैं कि यही मूल विग्रह अभी जो है वो जयपुर में स्थापित है, क्योंकि जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ था भारतवर्ष पे, मतलब मंदिरों के ऊपर जब उन्होंने किया था, तो ये कहते हैं कि जो मूल विग्रह अभी जो गोपीनाथ जी का है वो वृंदावन में, सॉरी जयपुर में, और हम वहाँ जाकर के दर्शन कर सकते हैं। एक गोपीनाथ जी किसके डीटीज माने जाते हैं, प्रयोजन के। अगर हम तीनों डीटीज के एक साथ दर्शन करेंगे तो सबसे पहले अविधेय डीटी जो कि मदन मोहन जी हैं, संबंध डीटी जो कि मदन मोहन जी हैं, अविधेय जो कि गोविंद देव जी हैं, और फिर प्रयोजन जो कि गोपीनाथ जी हैं। तो ये क्रम भी यही रहता है कि पहले मदन मोहन जी के चरण, और अभी गोविंद देव जी के मुख वक्षस्थल, और गोपीनाथ जी के मुख, नहीं गोपीनाथ जी का वक्षस्थल है एक्चुअली में, गोपीनाथ जी के वक्षस्थल और गोविंद देव जी का मुख, इस तरह से पहले लोग दर्शन करते हैं मदन मोहन जी, फिर गोविंद देव जी, फिर गोपीनाथ जी। दर्शन इस तरह से करते हैं क्योंकि वो तीनों क्रम में आता है ना उस बड़, एनीवे प्रयोजन के डीटीज हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, और उन्होंने इसका प्राकट करवाया था। बताते हैं कि मधु पंडित जी का जो समाधि है वो गोपीनाथ मंदिर जी के प्रवेश द्वार के ऊपर ही बनाया हुआ है, के ऊपर स्थित है, अकॉर्डिंग टू दिस गौड़िया वैष्णव बुक्स, कि आखिर समाधि क्षेत्र में है, मुझे नहीं पता इसके बारे में कहाँ है। मेरे ख्याल से गोकुलानंद जी के कोर्टयार्ड में भी कुछ आचार्यों का है, और कुछ धीर समीर क्षेत्र में भी है, और कुछ समाधि क्षेत्र में भी है, पर इस बुक में लिखा हुआ है कि वो राधा गोपीनाथ मंदिर के परिसर के द्वार के ऊपर ही बनाया हुआ है उनका जो समाधि मंदिर है। श्रीमधु पंडित तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की। और आज जानवा माता जी का भी आविर्भाव तिथि है, तो जानवा माता को हम सब लोग जानते भी हैं और सुना भी है, और सबने कई बार जो है हमने उनके बारे में कई बार यहाँ पर चर्चा भी हुई है। तो जानवा माता जो है वो बलराम जी की जो दो पत्नियाँ थीं, रेवती और वारुणी ना, तो वारुणी का एक्सपेंशन है वसुदा, और रेवती की एक्सपेंशन थी जानवा माता, और ये दोनों प्रकट हुई थी शालिग्राम ग्राम में, जो कि मायापुर कटुआ के पास एक जगह है, ये शायद नदिया डिस्ट्रिक्ट में है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं, पर वहाँ शालिग्राम नाम का गांव है जहाँ पर ये दोनों प्रकट हुई थी। और इनके जो पिता थे वो सूरजदास थे, और इनकी ये दो बेटियाँ थीं। तो जब ये दोनों बेटियाँ बड़ी हुई तो अब सोच रहे थे कि मैं इन दोनों का विवाह किससे करूँगा, तो बड़े चिंतित थे। तो एक दिन जब सोए तो सपने में जो है वो उन्होंने देखा कि ये दोनों बेटियों को नित्यानंद प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु जो है उस समय महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में थे। तो महाप्रभु ने उनको वहां से कहाँ भेजा कि आप बंगाल जाओ और वहां पर जाकर प्रचार करो। तो जब बंगाल से आए, सॉरी जगन्नाथपुरी से वापस आए बंगाल में, तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने इन दोनों बहनों से विवाह किया था। तो ये सपना देखने के बाद जो है वो सूरजदास जी ने अपने एक व्यक्ति को भेजा श्रीवास आंगन मायापुर में, क्योंकि जो जगन्नाथपुरी से आने के बाद नित्यानंद प्रभु उन्हीं के घर में रुके हुए थे। तो उनको बताया कि सूरजदास जी अपने दोनों बेटियों का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तो करेंगे। तो माँ नित्यानंद प्रभु और बाद में अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित, सारे बड़े बड़े आचार्य जो कि उस समय मायापुर में थे, सभी लोग जो है कीर्तन करते हुए गए शालिग्राम। शादी का विवाह का वो नहीं गया, बाराती नहीं गई, कीर्तन मंडली गई थी, और पूरा कीर्तन करते हुए वहां तक गए। और उसके बाद उनका वहां पर जो है वसुधा और जानवा का विवाह जो है उनके साथ होता है। तो पंच तत्व के डिसअपियर होने के बाद है ना, तो जानवा माता एक तरह से अघोषित रूप से जो है वो वैष्णवों की आचार्य थी, घोषित आचार्य तो नहीं थी बट अघोषित आचार्य थी वो, मतलब हर व्यक्ति उन्हीं से जो है परामर्श लेता था, पूछता था। और उसके बाद जब खेतुरी गांव में चैतन्य महाप्रभु का जो ये शुरुआत हुई, जो कि गौर पूर्णिमा फेस्टिवल की, तो जानवा माता वहाँ बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, सारे वैष्णवों को आमंत्रित करना, स्वयं अपनों हाथों से जो है वो प्रसाद बनाती थी और सारे वैष्णवों को खिलाती थी। और खेतरी गांव के उस गौर पूर्णिमा उत्सव में स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी आते थे। अभी ये खेतरी बांग्लादेश में है, तो ये वहीं पर सबसे पहले गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल जो है वो शुरू हुआ था। जानवा माता का जो ये जानवा नाम है ये एक्चुअल में वैष्णवों द्वारा दिया गया था, बताते हैं कि ये, और हमेशा जानवा माता कभी गौर मंडल तो कभी ब्रज मंडल, दोनों जगह आधा आधा समय बिताती थी, चार छः महीने उधर रहती थी, चार छः महीने इधर रहती थी, तो कभी गौर मंडल कभी ब्रज मंडल। एक इससे ये भी प्रमाणित होता है कि गौर मंडल और ब्रज मंडल में अभिनेता है। तो ये इसको, और उनका एक नाम है नित्यानंद स्वरूपनी, नित्यानंद स्वरूपनी मतलब उन्होंने काफी बहुत सारे नास्तिकों का और पापियों का भी उद्धार किया था। उन्होंने उनके जो है कई जगह पर उन्होंने उनको केवल अपने वाणी से कुछ बता करके, किसी को उपदेश दे के, बहुत बड़ी प्रचारक भी थी, तो उन्होंने जो है कई काफी सारे नास्तिक लोगों को जो है उनका भक्त बनाया। और ये कहा जाता है कि ये एक, हाँ इनका एक और नाम जो है वो नित्यानंद शक्ति, नित्यानंद प्रभु की शक्ति थी तो इनका एक नाम नित्यानंद शक्ति भी है। और ऐसा कहा जाता है कि जानवा माता जो है वो इस भौम लीला को उन्होंने समाप्त किया, जो वृंदावन में गोपीनाथ जी की ड्यूटी हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, उन्हीं गोपीनाथ ड्यूटी के भी अंदर में उन्होंने प्रवेश कर लिया था, और उनके प्रवेश करके अपनी यहाँ संसार की जो लीला है वो समाप्त करी थी। श्री जानवा मताविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सीता जी का प्रणाम मंत्र है। उद्भव मतलब उत्पत्ति, स्थिति मतलब पालन, संहार कारणी संहार करने वाली, उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली, क्लेश हारणी मतलब सारे दुखों को दूर करने वाली, सर्वश्रेयस्करी मतलब सभी का कल्याण करने वाली, ऐसी सीता को मैं प्रणाम करता हूं। अहम न तो मैं प्रणाम करता हूं राम वल्लभाम, जो राम को बहुत प्रिय हैं। ये जो है इस श्लोक का अर्थ है कि जो इस भौतिक जगत के उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, जो सभी का दुख हारने जो है हरने वाली हैं और सभी तरह के कल्याण करने वाली हैं, ऐसी सीता को मैं प्रणाम करता हूं जो राम को बहुत प्रिय है। तो ये सीता जी का एक्सक्लूसिव प्रणाम मंत्र है, बहुत मुश्किल से मिला था ये। राम का प्रणाम मंत्र सैकड़ों की संख्या में है, पर सीता जी का प्रणाम मंत्र मुझे लगता है अवेलेबल भी नहीं होता, किसी भक्त को याद भी नहीं होता है। तभी मैंने जानबूझ के लिखा कि हम सीता देवी का प्रणाम मंत्र याद कर सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव सीता जी का प्रणाम मंत्र है। तो सीता जी भी जो है जैसे कि त्याग समर्पण है ना की मूर्ति थी, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श स्त्री, एक आदर्श पुत्री के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया जब इस भौतिक जगत में लीला के लिए उत्पन्न हुई थी। तो भगवान जब लीला करने की सोच रहे थे तो भगवान ने कहा कि मैं तो दशरथ के घर उत्पन्न होऊंगा, मैंने उनको वचन दिया हुआ है। तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मी जी ने कि मैं कहाँ उत्पन्न होंगी, कहा आप अपने लिए घर ढूंढ लो। उनका ठीक है, एक और पायस किंग है पृथ्वी पर इस समय, तो मैं उनके घर आऊंगी। तो सीता जी ने किनको ढूंढा, जनक महाराज को। जनक महाराज की कोई संतान नहीं थी उस समय, बाद में उनकी एक और बेटी हुई जो थी कि उर्मिला। तो जनक महाराज जो है वो यज्ञ करना चाहते थे, वाजपेयी यज्ञ। तो यज्ञ के लिए उनको ब्राह्मणों ने कहा कि आप कोई जगह ढूंढिए, मतलब सॉरी उस आप जो जगह ढूंढिए हमने उस पर आपको अपने हाथों से हल चलाना पड़ेगा। तो महाराज जनक ने के लिए सोने का हल बनवाया गया। हल तो पता भी नहीं अभी यहाँ के लोगों को, क्योंकि आप ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं। कुछ पुराने लोग होंगे जिन्होंने गांव में देखा होगा, तो उसमें वो एक लोहे का वो होता था, सीत बोलते थे उसको, तो उससे वो एक व्यक्ति पकड़ता था और बैल या जो भी भैंस या बैल जो कि उसको जोतते थे, तो उससे वो तब वो जनक महाराज जब उस खेत को जोत रहे थे तो एक जगह टकराया और रुक गया वो। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर क्या है, अपने सेवकों को आदेश दिया। तो उन्होंने खोदा, उसको खोदा तो उसमें से एक बॉक्स निकला, उस बॉक्स में से एक बहुत सुंदर लड़की निकली और वो थी सीता जी। तो सीता जी अयोनिजा हैं, जैसे राधा अयोनिजा हैं, सीता भी अयोनिजा हैं, किसी मानव शरीर से उत्पन्न नहीं हुई हैं। और इस तरह से फिर उन सीता जी को वो घर लेके आए और वो जगह अभी भी है, आप जाएंगे अभी भी मिथिला का काफ़ी सारा हिस्सा, कुछ हिस्सा नेपाल में है और कुछ हिस्सा अभी भारत में है, ये दोनों मिला के मिथिला राज्य था ये बहुत बड़ा। तो अभी ये जो जन्म स्थान है वो भारत के हिस्से में है और जहाँ सीता जी प्रतिदिन जा कर के गिरजा पूजन करती थी वो जगह भी भारत में है, वो फुलवारी भी भारत में है जहाँ राम और सीता पहली बार मिले थे। बाकी विवाह स्थल महल ये सब जनकपुर में है, मतलब कुछ इधर है और कुछ उधर है। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस तरह से जो है वो अब प्रकट हुई सीता जी और राजमहल में रह रही थी। और जब वो बड़ी हुई तो जब वो 4-5 साल की थी शायद, तो उनके राजमहल में एक बहुत पुराना धनुष रखा हुआ था शिव जी का। ये धनुष की भी बड़ी अलग कहानी है, हम केवल सीता जी से संबंधित चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो बहुत पुराना धनुष था शिव जी का, बहुत भारी था, जिसको उठाने के लिए 500 लोग लगते थे या 300-300 बुलक काट लगाया जाता था उस धनुष को उठाने के लिए। एक दिन सीता जी अपने छोटे छोटे और भी जो सहेलियां थी उनके साथ खेल रही थी, तो खेलते खेलते उस हॉल में चली गई जहां पर ये धनुष रखा हुआ था। उन्होंने देखा बड़ा पुराना सा धनुष रखा है, इतना बड़ा है ना, अजीब सा, साफ सुथरा भी नहीं है। तो उन्होंने उसको उठा लिया और उठा करके जो है, दो तरह के वर्जन है, एक बताते हैं कि उनका कुछ खेलने वाला कुछ बॉल या कुछ ऐसी चीजें ऊपर लटक गई थी, उन्होंने देखा कि कुछ उतारने के लिए है नहीं, तो वो जनुक उठाया वो शिवजी वाला और उससे उतार लिया। कई जगह ये वर्जन है कि उन्होंने उसको देखा कि ये तो बहुत खराब है, बहुत दिन से साफ सुथरा हुआ नहीं है, तो धनुष को उठा के थोड़ा अलग से रख दिया। तो ये जब वो बच्चों ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, इतने बड़े धनुष सीता ने उठा लिया। जो सेवक थे उनको तो पागल ही हो गए देख के, इतनी छोटी सी लड़की ने इतना बड़ा धनुष उठा दिया है ना। वो भागते गए कहां पर, राजा जनक के पास कि महाराज वो सीता जी, सीता ने वो धनुष उठा लिया, राजकुमारी ने वो धनुष उठा लिया। तो ना जनक को विश्वास नहीं हुआ, करा भगा दिया उनको, सीता ने धनुष उठा ली। 500 लोग जिसको उठाते हैं, 300 गाड़ियां बुलक काट लगता है, उसको सीता ने उठा लिया। कह रहा महाराज हम आपको झूठ नहीं कह रहे, ये बिल्कुल सही सत्य है। तो अब जब बार बार कहा गया तो जनक को भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई, तो वो जाते हैं महल के अंदर और सीता से पूछते हैं कि आप उस तरफ गई थी जहां धनुष रखा हुआ? हाँ मैं गई थी, लेकिन मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैंने वो धनुष से ना अपनी वो चीजें उतारी थी जो मेरी किली। अब तो जनक महाराज भी बेहोश होने लगे, अब ये क्या कह रही है, कह रहे मेरे साथ चलो। अब उनको लेके गए और उन्होंने कहा कि इसको उठा के दिखाओ, तो उन्होंने उठा लिया। अब जो है उसी दिन उन्होंने जो है जनक महाराज ने प्रतिज्ञा करी कि इसको ये धनुष उठा लेते, इसका मतलब एक ऑर्डिनरी तो है नहीं, तो इसका जो पति होगा वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा कर ली कि इस धनुष को जो भी तोड़ेगा या प्रत्यंचा चढ़ा करके वो चलाएगा उसी से इसका विवाह करूंगा। तो इस तरह से जो है वो सीता जी, तो अब उन्होंने शुरुआत में ये पता लग गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की है। तो हम देखते हैं कि उसके बाद इनका विवाह होता है और विवाह के बाद जो है सीता जी राजमहल, अयोध्या के राजमहल में पहुंचती हैं। तो अयोध्या के राजमहल में एक परंपरा थी कि जो बहू आती थी वो खीर बनाती थी सबके लिए, है ना। हालांकि सीता जी उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन उनको बोला गया कि आप खीर बनाओ। हालांकि उनके साथ दासियां थी और जो कौशल्या भी खड़ी थी और बाकी माएँ भी खड़ी थी, तो सीता जी ने जो है वो खीर कुक किया। तो खीर बना करके उन्होंने जो है सबको परोसा, क्योंकि सारे घर के मेंबर वो बहू के द्वारा परोसे गए खीर खाते थे। मतलब उस राजमहल में एक, आप समझ लीजिए, एक परंपरा थी अयोध्या के राजमहल में। तो खीर परोसा गया, जब सबके उसमें प्लेट में डाल दिया, सीता जी ने खुद भी डाल रही थी, तो दशरथ जी के प्लेट में जब डाला उन्होंने और जब लोग शुरू करने, तो वो एक छोटा सा तिनका जो है वो दशरथ जी के उस खीर में गिर गया। अब कहाँ से आया, कैसे हुआ, वो छोटा सा तिनका जो है वो खीर में, और सीता जी ने देख लिया, दशरथ ने भी देख लिया। तो सीता जी ने आंखें तरेड़ी, मतलब ना बहुत क्रोध से जो है उस जैसे ऐसे तिनकों को देखा, बहुत क्रोध से। तो क्रोध से देखा तो तिनका बाहर आके जल गया, ये बात किसी की नजर पे नहीं पड़ी, केवल दशरथ ने देखा है। तो दशरथ उस समय तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने चुपचाप जो है खा लिया, सब उठ गए। तो बाद में उन्होंने सीता जी को बुलाया अपने कक्ष में और कहा आपने जो किया मैंने देख लिया ना, आपने उस तिनके के ऊपर ऐसी आपने क्रोध किया कि वो तिनका जो है वो मतलब जल गया है। तो अयोध्या के राजभवन में या कहीं बाहर भी कभी किसी को ऐसे आंखें तरेड़ के मत देखना, मतलब ऐसे क्रोध से आप मत देखना कभी, नहीं तो वो जो है खत्म हो जाएगा। और ये यही कारण था कि जब भी रावण आता था, सीता जी को थ्रेटनिंग करता था, सीता जी नीचे रहती थी और नीचे जमीन की तरफ देखने लगती थी, क्योंकि वो रावण की तरफ अगर क्रोध करते देखती तो रावण जल जाता। इसीलिए सीता जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने रावण की तरफ आंखें उठाकर देखी हो। इस तरह से अयोध्या के राज में, तो उन्होंने जो है एक आदर्श बहू के रूप में भी अपने आप को अयोध्या में स्थापित कर लिया था कि प्रतिदिन अपनी कौशल्या को और बाकी दूसरी जो उनकी सास थी उनकी सेवा करती थी। उसके बाद जब राम को वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा कि मैं भी चलूंगी। जब राम ने उनको बहुत तरह से मना किया कि जंगल में जो है बहुत सारे ये संकट हैं, है ना, और उसमें बहुत सारा दुख भी है, कांटे हैं, इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कहे, तो सीता जी सुनती रही राम क्या कह रहे हैं। फिर कहे तुम यहीं रहो, पिताजी बहुत दुखी हैं, माता कौशल्या बहुत दुखी होंगी क्योंकि मैं जा रहा हूं, बहुत दुखी हैं, तो तुम उनकी सेवा करो और तुम साथ में रहोगी तो वो प्रसन्न रहेंगी। तो सीता जी ने कहा कि मेरे ये सारे जो लोगों से रिलेशन है वो किसकी वजह से है, आप किस वजह से हैं, अगर आपसे संबंध नहीं तो इन सब से मेरा कोई संबंध नहीं, तो मैं मेन संबंध को कैसे भूल जाऊंगी। तो कह रही है कि मैं आपके सेविका की भूमिका में रहूंगी, है ना, और आप निश्चिंत रहिए कि मैं आपके कभी बाधा नहीं बनूंगी, तो आप मुझे जो है निश्चित रूप से लेके चलिए। फिर उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि एक बार मेरे पिताजी जो हैं मिथिला में ज्योतिषी को बुलाया था उन्होंने, और ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखा, तब जब मेरा हाथ देखा तो मेरे पिता ने पूछा कि इसका भविष्य क्या होगा, तो उन ज्योतिषी ने बताया था कि ये दो बार वन में जाएगी, इसको जंगल में जाना लिखा है दो बार। तो मेरे पिता ने मुझे कभी निकलने नहीं दिया घर से, मिथिला के राजभवन से मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे, मतलब जंगल की तरफ तो राजधानी के बाहर और ज्यादा कहीं बाहर मैं निकल नहीं सकती थी, क्योंकि सबको आदेश था कि कोई इसको जंगल की तरफ ले भी नहीं जाएगा, क्योंकि जनक को लगता है जंगल में क्यों जाएगी, तो जनक बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली था कि मुझे जंगल दिखाने भी नहीं ले गए कभी। तो आज मेरे को मौका मिल गया आपकी वजह से, और वो ज्योतिषी की बात भी ठीक हो रही है कि मैं जंगल में जाऊंगी। तो राम जो है वो फिर भी नहीं मान रहे थे, तो राम ने कहा नहीं नहीं तुम मेरी वजह से जो है आपकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी ये है। तो भगवान सीता जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकते हो ना, आपके अंदर मतलब ये शक्ति नहीं है कि आप अपनी पत्नी की रक्षा कर सकते हो जंगल में, मैं ये मान लूं, या मेरे पिता मिथिल जनक ने बहुत बड़ी गलती की थी जो आपको पुरुष रूप में उन्होंने चुना था कि आप बहुत बड़े अच्छे पुरुष हो, अयोध्या के राजकुमार हो, अब तो ये साबित नहीं हो रहा है कि आप बहुत अच्छे पुरुष हो, बहुत बलवान हो और अयोध्या के राजकुमार भी हो। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो बाकी प्रजा की रक्षा क्या करेगा, वो तो आप तो राजा बनने के योग्य भी नहीं हो फिर तो। अब ऐसी बात नहीं, जब सीता जी ने कही तो राम ने कहा कि ठीक है चलो, तो राम जी मान गए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम सच में जाने को तैयार हो कि नहीं, है ना। तो फिर जो है वो दोनों जाने के लिए तैयार हो, मतलब सीता जी तैयार होती हैं और फिर राम के साथ वनगमन को भी जाती हैं। तो रास्ते में जब वो घटना होती है, जब वो मल्लाह जिसको वो केवट, जब उनका पैर चरण धोने लगता है भगवान का, तो वो एक्चुअल में सीता जी ने इस केवट को कई बार जो है वो क्षीर सागर में उन भगवान को टच नहीं करने दिया था। ये एक्चुअल में केवट क्षीर सागर का कछुआ था जो कि केवट के रूप में जन्म लिया जिसने, और उस समय जब भी वो आता था भगवान के चरण छूने के लिए तो सीता जी जो है वो हाथ से जो दूर फेंकती थी, मतलब लक्ष्मी जी, कि चल दूर, और कभी भगवान को छूने नहीं देती थी उसको। अब उसको लगता था मुझे कभी नहीं छूने देता, आज उसको पूरा मौका, सीता जी देख रही हैं ये छू रहा है बड़े आराम से, रगड़ रगड़ के धो रहा है ना, पर आज उनका बस नहीं था एक्चुअली में, कि आज वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि राम ने खुद ही बोल दिया था कि ठीक है तुम जैसे चाहो वैसे करो। और इस तरह जो है वो सीताराम जो है वो वन को जाते हैं, वहां पर जो घटनाएं होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक तरह से आप देख लीजिए कि नेगेटिव टीचिंग्स भी हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए कि जब सीता जी ने वो जो मृग को देखा जो कि सोने का मृग था, तो भगवान ने कहा कि इस सोने का मृग होता नहीं है, मैन्युफैक्चरर है, मालूम है क्या बनाता हूं भाई, नहीं बनाता है ना, हर मैन्युफैक्चरर को मालूम था मैं क्या माल बनाता हूं। तो उन्होंने सीता जी को कहा कि इस सोने का मृग होता नहीं है। असंभवम हे मृगस्य जन्मम तथापि सीता लुलभे मृगाय, फिर भी सीता जी ने कहा कि मुझे वो मृग चाहिए। भगवान ने कहा असंभव है हे मृग का जन्म लेना, तो लेकिन सीता जी ने जब जिद किया तो भगवान ने कहा ठीक है। तो अब क्या इसमें एक टीचिंग है कि सीता जैसी, हालांकि ये ट्रांसजेंडर लेवल पर हो रहा है और लीला करने के लिए हुआ, परंतु आप ये देखिए कि वो सीता जी भी मृग से, सोने के मृग से आकर्षित हो गई। तो भक्तों के जीवन में ऐसे बहुत क्षण आते हैं जब हम चीजों से बहुत आकर्षित होते हैं, है ना, बहुत ऐश्वर्य से, सुख से, धन से। भगवान ऐसे मौके हमें बहुत देते हैं और हम उससे बहुत आकर्षित होकर के अपनी सारी भक्ति खत्म कर लेते हैं। तो सीता जी के कह रहे हैं, इसीलिए ये एक इंडिकेशन है कि सीता जी जैसी देवी भी आकर्षित हो सकती हैं सोने के मृग से, तो कोई दूसरा व्यक्ति कैसे नहीं इन चीजों से आकर्षित होगा। और उसके बाद जब वो मारा जाता है, मारीच, और सीता और लक्ष्मण का नाम लेता है, तो सीता जी लक्ष्मण को बोलती हैं कि आप जाओ। तो लक्ष्मण चूंकि बहुत, उन्होंने कहा कि राम को कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऑब्वियसली सभी जानते थे ना, सीता भी और वो भी और वो भी, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप राम संकट में हैं, आप जाइए। जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोला लक्ष्मण को, बहुत कड़वी बातें बोली। तो इमोशंस कई बार इंटेलिजेंस को ओवरकम कर देता है ना, जो हमारी भावनाएं हैं, मनोभावनाएं हैं, वो इंटेलिजेंस को ढक देता है, जो कि आप सीता जी के इस प्रसंग में देख सकते हो, है ना। तो वो बाद में पछताना ना पड़े कहीं, उनके इमोशंस ने भी क्या किया, उनकी उनकी बुद्धि को ढक दिया कि नहीं राम खतरे में है, ये उनके अंदर में ये इमोशन आ गया, ऐसा भाव मनोभाव उत्पन्न हुआ कि निश्चित रूप से राम खतरे में है, जबकि राम को किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं। लक्ष्मण बार बार कह रहे हैं कि माता उनको कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरह का खतरा नहीं है। और मैं जानता हूं, लक्ष्मण ने कहा कि जब हम मैं चला जाऊंगा और हम पीछे आएंगे तो आप यहां हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये दंडकारण्य है, ये पंचवटी, ये जो है ये चित्रकूट का जंगल नहीं, ये दंडकारण्य का जंगल है, जो कि बेहद खतरनाक जंगल है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके कहने से अगर चले जाऊं तो मैं निश्चित रूप से जो है आप हमें यहां नहीं मिलेंगी वापसी में। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि मुझे राम ने आदेश दिया है आपकी रक्षा करने का, तो मैं यहीं पर रहूंगा। तो सीता जी ने कहा कि मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम यहां से जाओ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो उनका जो इमोशन है वो किस तरह से उनको ओवरकम कर जाता है उनके इंटेलिजेंस को। तो ये हमारे लिए भी होता है, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिसमें हम इंटेलिजेंस यूज नहीं करते, है ना, किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया और हम पूरे भावनाओं में बह करके कई ऐसी चीजें कर जाते हैं या बोल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम बाद में पश्चाताप करते हैं। सीता जी ने भी जैसे बाद में पश्चाताप किया, क्योंकि उनको अब ये हो रहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी इस तरह से जो है उन्होंने। लेकिन उससे पहले सीता जी जो है वो मिलती हैं किससे, अनसुईया जी से, और अनसुईया जी अत्रि ऋषि की पत्नी थी जिन्होंने उनको पतिव्रता धर्म का के बारे में बहुत कुछ बताया था कि जो है पतिव्रता का धर्म क्या होता है और तुम्हें हर तरह से उस पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। वो थोड़ा लंबा है, अभी हम लेंगे नहीं क्योंकि समय नहीं है। तो उन्हें केवल इतना है जरूर है, उन्होंने बोला कि चार चार तरह चार तरह की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, है ना। और उसमें उन्होंने बोला कि कैसा भी पति क्यों ना हो, स्त्री का कर्तव्य यह है। इवन ऐसे ऐसे शब्द अनसुईया जी कह रही हैं। अनसुईया जी ऐसी सती स्त्री थी जिन्होंने शिव जी को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को बालक के रूप में कन्वर्ट कर दिया था, केवल और केवल अपने सतीत्व के बल पर, श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की। तो उन्होंने जो है वो उनको कन्वर्ट कर दिया था कि वो बच्चे बना दिए थे। वो सीता सती अनुसुईया आज सीता जी को शिक्षा दे रही हैं सती के बारे में। उसके बाद जब सीता जी का अपहरण हो जाता है और वो रावण लेके चला जाता है उनको, तो उनको एक अशोक वाटिका में रखा जाता है। तो अशोक वाटिका में जो है वो सीता जी तकरीबन 14 महीने तक वो रावण के कब्जे में रही, 13 महीने कुछ दिन, तकरीबन 14 मंथ। तो 14 महीने में उन्होंने कभी कुछ खाया पिया नहीं, ना खाया ना कुछ पिया। बट एक बार जब कुछ महीने हो गए थे तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि सीता का अपहरण हो गया है, रावण हर के ले गया, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अब आप कहोगे ब्रह्मा जी के लिए खुशी की बात क्यों, श्री राधा राधिका रमण भगवान की, क्योंकि उनको लग रहा था कि राम जो काम करने आए थे अब वो करेंगे, है ना, तो रावण का वध जरूर करेंगे। तो इस तरह से फिर वो कहते हैं कि लेकिन माता सीता ने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है और आप जो है उनके लिए कुछ लेके जाओ, इंद्र को बोला। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, वो पायस लेके जाते हैं अमरावती से, खीर पायस। तो अमरावती से खीर लेके जाते हैं और सीता जी के सामने प्रकट होते हैं, एक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और सीता जी को बोलते हैं कि मैं इंद्र हूँ और अमरावती से आया हूँ, आप ये खीर खा लीजिए। तो आप जब तक यहाँ रहेंगी ये कई सालों तक ना आपको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो सीता जी को लगा कि पता नहीं कहीं माया भी ना हो, रावण का व्यक्ति ना हो। तो उन्होंने कहा मुझे कैसे पता कि आप इंद्र हो, आप अपना पहले असली रूप में आओ। तो इंद्र अपने असली रूप में आ गए। तो उन्होंने फिर भी माता सीता को थोड़ा सा संदेह था कि व्यक्ति है कि नहीं। तो फिर उन्होंने उनके कपड़े की तरफ देखा तो कपड़ा बिल्कुल भी कहीं से भी थोड़ा सा मुड़ा हुआ नहीं था, एकदम परफेक्ट। वो समझ गए कि डर्ट नहीं था इस कपड़े के ऊपर। तो इसका मतलब ये स्वर्ग लोगों के प्राणी की एक पहचान होती है। फिर उन्होंने देखा उनके पैर की तरफ कि इसका पैर कहाँ पर है, तो देखा जमीन से 6 इंची ऊपर उठा हुआ है। तो फिर समझ गई कि ये इंद्र ही है, क्योंकि देवता लोग जमीन पर पैर नहीं रखते हैं। जब भी ये कोई देवता यहाँ प्रकट होता है किसी को दर्शन देने के लिए भी, तो वो जमीन पर पैर नहीं रखते हैं वो, क्योंकि उनके लिए डर्टी प्लेस है ये, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं उनके लिए उनके लिए बहुत। तो वो सीता जी ने जब देखा कि इसका पैर ऊपर है तो पूरा कन्फर्म हो गया। तो फिर उन्होंने खीर ले लिया और फिर सीता जी ने पूरे 14 महीने में वो केवल वो खीर खाया था, एक जो एक बॉल में वो खीर खाया था जो इनके लिए इंद्र लेके आए थे। उसके बाद सीता जी को ढूंढने की वो होती है और हनुमान जो है फिर यहाँ आते हैं। तो उनको लगता है कि हम कैसे अप्रोच करूँ सीता जी को। तो फिर वो बाद में वो अंगूठी गिरा करके फिर अप्रोच करते हैं सीता जी को और सीता जी से पूछते हैं, फिर बताते हैं, कहते हैं कि तुम छोटे छोटे बंदरों का संग कैसे हो गया, भगवान कैसे बंदरों से कैसे मिले। तो फिर हनुमान जी पूरी कथा बताते हैं। और तो फिर सीता जी पूछती हैं कि सारे बंदर तुम्हारे जैसे हैं छोटे छोटे। कहा नहीं नहीं माता, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तो उन्होंने पूरी अपना विकाल रूप दिखाया। कहा मैं सबसे छोटा हूँ, हनुमान जी ने बोला कि बंदर सेना में बहुत बड़े बड़े बंदर हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। तो फिर कह रहे हैं कि लेकिन जिस जो है राम लेने नहीं आए, 12 महीने लगभग बीतने वाले हैं तो लेने नहीं आए। उन्हें मुझे आज तक याद है कि एक बार जयंत ने, इंद्र का बेटा था जयंत, मेरे को एक बार चोंच मारने का प्रयास किया उसने, तो भगवान ने उसके पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और रावण मेरा अपहरण करके ले आया। तो अब तक जो है वो अब लेने नहीं आए मुझे। तो कहा माता बहुत शीघ्र आएंगे, वो अलग कहानी है जिसमें सीता जी माता जी को चोच मारा था उसने जयंत ने, और भगवान ने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था उसके पीछे। बताते हैं ब्रह्मास्त्र था, कोई बताता है धनुष, एक तीर था विशेष तरह का जिसे भगवान ने छोड़ा था। तो वो चारों तरफ घूम के आ गया, हर जगह गया, किसी ने उसको शरण नहीं दी। तो वापस कहाँ आ गया, नारद जी ने कहा कि तुम वापस चले जाओ, राम से क्षमा मांगो। तो भगवान राम ने कहा मैं तुम्हें क्षमा तो कर दूंगा, बट ये तीर क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि एक बार इस जाने के बाद काम तो जरूर करता है, अब कुछ कुछ ना कुछ तो तुम्हारा होगा, तुम क्या करना चाहते हो बताओ। तो उन्होंने क्या किया, आंखें निकाल दी उसकी, क्योंकि उसके रूप में था, एक कौवे के रूप में, तो उसकी एक आंख निकाल दी थी। एनीवे, तो सीता देवी जो हैं वो, उन्होंने फिर हनुमान जी ने प्रस्ताव दिया, हनुमान जी ने कहा कि माता आप क्यों नहीं अभी चलते, मैं आपको यहां से वापस ले चलता हूं, बात खत्म, क्या करना है, युद्ध करना और ये करना वो करना, भगवान को मारना है बाद में मार देंगे, है ना, आप चलो मेरे साथ। अब सीता जी जा सकती थी, है ना, परेशान थी, दूसरे उसके में रह रही थी, एक राक्षस के राज में रह रही थी, पर सीता जी ने पहले दो बातें उनको बताई, कहा कि एक तो ये कि मैं पर पुरुष का कभी स्पर्श नहीं करती। तो आप पूछ सकते हो कि पर रावण पर पुरुष नहीं था, तो सीता जी ने कहा कि उसमें मेरा वश नहीं चला, है ना, और लेकिन मैं अपने मर्जी से किसी पर पुरुष को कैसे छू सकती हूं, पहला टेक्निकल प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि तुम मुझे ले भी जाओगे और रास्ते में ये जितने भी राक्षस हैं तुम्हारा पीछा करेंगे और युद्ध होगा समुद्र के ऊपर, और उस युद्ध पता चला मैं ही गिर जाऊंगी नीचे, है ना, और समुद्र में बड़े बड़े जानवर हैं मुझे खा जाएंगे, तो ये भी ठीक नहीं। तो कह रहे तीसरा कि तुम मुझे चलो सेफली ले भी गए, है ना, ले भी गए कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, राक्षस को भी तुमने मार दिया, मुझे सेफली लेके चले गए, तो राम की ग्लोरी धूमिल हो जाएगी, जो राम का यश है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये जो कंडीशन है मेरे लिए ज्यादा बड़ा है, इसलिए इस राम का अपयश होगा इससे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तुम राम को लेकिन आप बता देना कि अगर वो एक महीने के अंदर नहीं आएंगे तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी उनको। तो इस तरह से जो है फिर वो सीता जी जो है ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं। और बाद में जब भगवान बोलते, जब ये युद्ध हो जाता है और सीता जी को संदेश देने के लिए हनुमान जी दोबारा जाते हैं कि माता रावण को मार दिया है और शीघ्र ही विभीषण लक्ष्मण सब आपको लेने के लिए आ रहे हैं, ये सूचना पहले से पहुंचा दो, मतलब क्योंकि ये सबका सबके जीवन बचाने का काम किसने किया, हनुमान जी ने, उन्होंने लक्ष्मण का जीवन भी बचाया, भरत का जीवन भी बचाया, और सीता जी का जीवन भी बचाया, और राम का जीवन भी बचाया। तो तभी भगवान वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे से कभी ऋण नहीं हो सकता, तुमने इतना बड़ा ऋण किया है हमारे पूरे परिवार के ऊपर। तो उन्होंने सीता जी को जब सूचना दी तो जो राक्षसियां सीता जी को बहुत तंग कर रही थी पहले और डराती थी इस तरह से करती थी, तो हनुमान जी ने फिर एक प्रपोजल दिया, ये दूसरा वाला प्रपोजल था कि आप माता आप कहो तो इन सारी राक्षसों को मैं आप मार देता हूं, अब है ना। तो सीता जी ने कहा कि इनका क्या दोष है, है ना, ये तो अपने जो है वो निष्ठुर राजा के अंदर काम कर रही हैं, इनको जैसा बोला जाता था वैसा करती थी, है ना। तो फिर सीता जी उनको एक कहानी सुनाती हैं, टाइम नहीं है मैं कहानी सुनाया था आपको, बहुत सुंदर कहानी है, बट क्या है कि सीता जी उनको एक कहानी सुनाती हैं बहुत सुंदर। तो उसके बाद कहती हैं कि किसी भी व्यक्ति को, एक निचोड़ है उसका, कि किसी भी व्यक्ति को जो बहुत पायस व्यक्ति है और जो बहुत सभ्य व्यक्ति है, जो बहुत उपकारी व्यक्ति है, उसको दूसरे व्यक्ति के प्रति कभी कोई बैर नहीं रखना चाहिए, चाहे वो उसका नुकसान किया हो जिसने, लेकिन फिर भी एक अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि उसके प्रति कोई बैर ना रखे। हमारे प्रति किसी ने अपराध किया इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसके प्रति अपराध करें या हम उसके प्रति कुछ, तो उसका निचोड़ यही था। तो सीता जी कहती हैं कि ये कभी नहीं करना और ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम दूसरे के प्रति, इन्होंने जो किया अपनी समझ से किया और इनके आदेश पर किया, पर मैं इनके प्रति ऐसा भाव नहीं रखती, तो फिर उसके बाद जो है सीता जी को सब लोग आ जाते हैं पुष्कर विमान में। सीता जी बोलती हैं कि मुझे सारे जगह दिखाओ जहां आप रोए थे, जहां तक मतलब जहां से मैं अलग हुई हूं वहां से लेकर वहां तक का जगह दिखाओ। तो पुष्पक में भगवान जो है उनको अलग अलग जगह सारी, हाँ जब आते हैं तो सीता जी को बोलते हैं, जब ये जीत लेते हैं और राम को ले पास लेके आते हैं विभीषण और हनुमान लक्ष्मण, तो राम उनके तरफ देखते तक नहीं है। जिस राम ने सीता जी के लिए पूरा अयोध्या खत्म करवा दिया, रावण को मार दिया, सारे कुछ नष्ट कर दिया, वो सीता जी की तरफ बिल्कुल नहीं देखा उन्होंने। इतने टाइम हो गया, 14 महीने के बाद सीता आई तो, और सीता जी देखे जा रही है राम को, राम बिल्कुल नहीं देख रहे। सारे बानर और सारे सेनापति सब लोग देख रहे हैं, क्या है राम ने इतना बड़ा वो किया और सीता जी की तरफ देख ही नहीं रहे। तो सीता जी समझ गई, उन्होंने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण काष्ट लेके आओ। काष्ट ले आए, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाया, सीता जी उसमें प्रवेश कर गई। कह रही हैं कि अगर मैंने मन से वचन से या एक्शन से कभी भी सपने में भी कभी किसी पर पुरुष के बारे में सोचा भी हो तो यह अग्नि मुझे बाहर नहीं निकलने देगी, जलाकर राख कर देगी। मगर सीता जी जो हैं वो अग्नि से और सुंदर होके बाहर निकलती हैं। इसमें भी दो वर्जन हैं, कई लोग जैसा कि कुछ राम जगह पर यह वर्णित है कि भगवान ने जब लीला करने से पहले सीता जी को अग्नि को दिया था और वो अग्नि जो है उन्होंने सीता जी को रख लिया था और एक छाया सीता को उनको सौंपा था, उसी छाया सीता को जो है वो लेके चले गए थे। वर्णन भी है एक जगह भगवान कह रहे हैं कि तुम पावक मह करो निवासा जौ लगी करो निशाचर नासा, कि तब मैं तुम तक तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचर का नाश करता हूं। तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई थी, तो वो सीता जी अब ओरिजिनल सीता वापस आ गई जो है, वो छाया प्रतिकृति सीता जो है वो चली गई थी। तो एक ये दूसरा वर्जन है। उसके बाद जब यहाँ आते हैं और अयोध्या में जब सब कुछ हो जाता है और राज तिलक भी हो जाता है तो बहुत हैप्पीली सब कुछ हो रहा है। तो एक दिन भगवान राम अब बात सुनते हैं, क्या है धोबी का है ना। अब ये धोबी की कहानी भी बड़ी विचित्र है, ये एक्चुअली में पिछले जन्म में तोता और तोती होते हैं, उसकी पत्नी तोती होगी ना, सूगी जो भी होगा, तो तोता और उसकी सी तोता। तो तोती थी वो एक दिन क्या कर रही थी कि वो उनके फुलवारी में जनक जहां जनक जी के जब फुलवारी था, अभी भी वो फुलवारी है एक्चुअली में, उस फुलवारी वाले उस जगह में वो एक पेड़ पे बैठ के एक दिन कह रही थी कि राम इतने सुंदर हैं, अयोध्या के राजा हैं, राजा बनेंगे, इतने सुंदर राजकुमार हैं, ऐसा कोई सुंदर नहीं है। और सीता जी अपने सखियों के साथ जो है वहां पर खेल रही थी, तो सीता जी सुन रही थी उसकी बातों को और कहती उसका विवाह। और उन एक्चुअली में वो जो तोती थी उसको ये नहीं पता था कि ये सीता है उनका, कि राम विवाह करेंगे सीता नामक एक राजकुमारी से और फिर दोनों ऐसे हो जाएंगे, फिर दोनों अयोध्या में राज करेंगे। तो सीता जी ने जब ये सुना तो कहे तो मेरी कहानी बता रही है। तो उन्होंने कहा उसको बोला अपनी सहेलियों को, इसको पकड़ के ले आओ तोती को। तो पकड़ के ले आए तो बोला तू किसकी कहानी सुना रही थी। कहती मैं राम की कहानी सुना रही थी, राम अयोध्या के राजकुमार हैं। क्या फिर बताओ। और तो बताया ऐसे सुंदर हैं ऐसे सुंदर। तो उनका विवाह किससे होगा। कह सीता से होगा। तो सीता कौन है। एक राजा की बेटी है। तो सीता जी ने कहा मैं ही हूं वो सीता। तो फिर इस तरह से उससे बात होने लगी जो सीता जी से। तो उसने कहा कि तू यहीं पर रह, मेरे राजमहल में रह, तेरे को जो खाना है जैसे करना है कर, जब मेरा विवाह हो जाएगा राम से तो मैं तेरे को छोड़ दूंगी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं महारानी राजकुमारी मैं नहीं रह सकती, मैं तो जंग मेरा इस महल में क्या काम, मैं तो जंगल में रहती हूँ, मेरे को जंगल में रहने दो, मुझे छोड़ दो। तो सीता जी ने कहा नहीं नहीं छोड़ूंगी नहीं, तुझे यहीं रहना पड़ेगा जब तक मेरा विवाह नहीं होता, तब तक जब तक राम यहाँ आएंगे नहीं मेरे से विवाह नहीं करेंगे तब तक तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो पता तो चले कि तू सच बोल रही है ना। तो कहा कि तुझे कैसे पता चला। करके मैंने अगर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में मैं रहती हूँ और वाल्मीकि मुनि ने जो है वो मेरे को कथा अपने उनको सुनाते हैं, तो वो कथा मैंने सुनी हुई है। कहा अच्छा, तो फिर वो जो है वो उसने कहा कि लेकिन उसके जो हस्बैंड थे मतलब तोता था, उसने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप हमें जाने दो, हम दोबारा आ जाएंगे आपके पास। तो सीता जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा तुम जाओ, उनको बोला तोते को कि तुम चले जाओ, इसको मैं रखूंगा खाली, कहने मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। और वो गर्भवती थी तोती, है ना। तो सीता जी ने जब बहुत जिद किया तो तोती ने बोर्ड को बड़ा खराब लगा एक्चुअली में। उसने कहा कि हम दोनों आज तक कभी अलग अलग रहे नहीं हैं, आप हमें उसमें डाल रहे हो। तो तोते ने सीता जी को साफ दे दिया कि आप हमें अलग कर रहे हो गर्भवती अवस्था में मेरी पत्नी से, तो आप भी गर्भवती अवस्था में आपका पति छोड़ देगा आपको। और ये जो चीज है वो कहां, ये दोनों क्या हो गए फिर अयोध्या में उत्पन्न हुए धोबी और धोबन के रूप में। और इन्होंने फिर उन्होंने यही बात बोली और जिसकी वजह से राम ने, तो राम जी ने आज परित्याग कर दिया फिर सीता का, है ना। सबसे पहले भरत को बुलाया, कहा सीता को जंगल में छोड़ा तो भरत बेहोश हो गए। शत्रुघ्न को बुलाया, शत्रुघ्न को बोला, शत्रुघ्न बेहोश हो गए। एक ही व्यक्ति है सम हर जगह टिकता था, वो थे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को, लक्ष्मण तो बहुत दुखी हुए हालांकि, पर लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो आपकी आज्ञा से बंधा हुआ हूं, आप जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा। परशुराम ने जैसे अपने अपनी माँ को मार दिया अपने पिता की आज्ञा की वजह से, ऐसे मैं आपकी वचनों से बंधा हुआ हूँ। हालांकि मेरा एक, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, राम को कहा कि आप अच्छा नहीं कर रहे, एक धोबिन की बात पर आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके वचन से बंधा हुआ हूँ, मैं जाऊँगा। और उन्होंने सीता को ये कह के नहीं ले गए कि आपको छोड़ने जा रहा हूँ, निष्कासित हो रहे हो आप राजमहल से, क्या करें। कि राम ने कहा कि सीता ने कल ही मुझे बताया था कि तपस्वी स्त्रियों को देखने का बड़ा मेरा बड़ा मन होता है, तो उनको बोलो कि आपको तपस्वी स्त्रियों को दिखाने ले जा रहा हूँ जंगल में। तो लक्ष्मण ने उनको बोला कि तपस्वी स्त्रियों को दिखाने के लिए ले जाओ। राम ने बोला झूठ बोलो, लक्ष्मण ने झूठ बोला और सीता जी को लेके गए। आप समझ रहे हो। तो इस तरह से जो है वो सीता जी को लेके गए, और जब गंगा पार कर लिया फिर वो सीता जी को छोड़ के छोड़ने लगे और कह रहे माता मैं जा रहा हूं। तुम जा रहे हो क्यों? क्योंकि राम का यही आदेश है कि मैं आपको जंगल में छोड़ दूं। वो आप सोचो, आप सीता जी की गर्भवती हैं वो उस समय, बिल्कुल घना जंगल, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, और उसमें कह रही हैं, तो बहुत रोने लगी एक्चुअली में और गिर बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो कुछ डियर और कुछ हाथी आ गए, और जिन्होंने सीता जी को, हाथी अपना पानी लेके आया और सीता जी के ऊपर डाला, होश में आए। तो सीता जी बहुत जोर जोर से रो रही थी, वाल्मीकि मुनि पास से ही गुजर रहे थे, वाल्मीकि मुनि और उनके जो शिष्य हैं। तो वाल्मीकि ने शिष्यों से कहा कि कोई स्त्री बहुत रोने की आवाज आ रही है, जाओ पता करो। तो वो गए और उन्होंने पता किया, कहा कि महाराज ये तो राम की पत्नी है, अयोध्या के राजा की पत्नी है, उन्होंने उनको छोड़ दिया है। तो भाग के गए, वाल्मीकि खुद गए, क्योंकि वो रामायण वो लिख रहे थे पहले से लिख लिया था, समझ लीजिए रामायण। उनको लगा था रामायण का करेक्टर आ गया है, तो अभी तो रामायण खाली ऐसे लिख रहे थे वो, उनको लगा पूरा करेक्टर ही आ गया यहाँ पर। तो फिर जो है वो इनको लेके चले गए और कह रहे हैं आप निश्चिंत से रहिए। उन्होंने आदेश दिया शिष्यों को, इनके लिए पर्ण कुटी बनाओ, और वहां पर कुछ साधु भी रहती थी उनको कुछ कुटी के अंदर, तो उनके जिम्मेवारी में सीता जी को दिया कि आप इनका ध्यान रखना है आप सबको, और इस तरह उनका ध्यान रखने लगे, और वहीं उन्होंने सीता जी ने जो है लवकुश को जन्म दिया। इस तरह से जो है वो जब दोबारा से, जब बाद में जब रावण राम, भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जब घोड़ा छोड़ा था, उस घोड़े को छोड़ने के बाद जो है इस घोड़े को पकड़ा किसने? लव और कुश ने, उसने घोड़े को पकड़ लिया और सबको हर पराजित कर दिया। शत्रुघ्न को मार दिया, लक्ष्मण को घायल कर दिया, मतलब भरत लक्ष्मण कोई टिका ही नहीं उनके सामने। अब तो घोड़ा ही खतरे में था, अब एक ही व्यक्ति टिक था जिसको आना था अभी, और वो थे राम। तो राम ने कहा ऐसा कौन व्यक्ति आ गया कि लक्ष्मण को, जो वो लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को और भरत को जो है मूर्छित कर सकता है, मार सकता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया। तो गब गए, लेकिन सीत उन्होंने देखा कि जब फिर उन्होंने कहा कि अपनी माँ से बोला, एक्चुअल में इससे पहले एक अलग अलग वाल्मीकि रामायण में जो कथा है उसमें आता है कि लव को पहले अरेस्ट कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया कि मतलब जो है एक उन्होंने जो अरेस्ट कर लिया तो कुश आए उसके बाद, तो कुश ने जो है फिर उनको मार दिया, शत्रुघ्न को मार दिया और उसको भी मार दिया, मतलब दो तीन लोगों को मार दिया, भरत को, हनुमान को भी, समतक इतने सारे लोगों को। जब सीता जी ने कहा कि तुम किसके साथ लड़ाई कर रहे हो इतने इतने दिनों से, किसको मार के आए हो, तो कहा एक एक बंदर है, एक वो अयोध्या का वो घोड़ा आया हुआ है। सीता जी ने सुना तो भागती हुई गई कि अयोध्या का घोड़ा को तुमने क्यों पकड़ा, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि उनके पिता का घोड़ा है। फिर जब देखा तो देखा वहां तो मामला ही अलग है, लक्ष्मण पड़े हैं, हनुमान पड़ा है, ये पड़ा है। फिर सीता जी ने अपनी शक्ति से उन्होंने जो है उस सबको जीवित कर दिया एक क्षण के अंदर, और उनको बताया कि ये सब परिचय कराया सबका। तब तक राम आ गए, फिर उनको बोला कि तुम्हारे पिता हैं। इस तरह से जब परिचय होता है तो वो सब चले जाते हैं। फिर अयोध्या की प्रजा कहती है कि आप जो है सीता को बुलवाइए, तो राम कहते हैं कि ठीक है। और इस तरह से सीता जी को दोबारा बुलवाया जाता है, और यज्ञ होने वाला होता है अश्वमेध यज्ञ का, जब समापन था तो सीता जी को फिर बुलाते हैं। तो सीता जी को बुलाते हैं तो जो राम हैं वो बहुत जो है वो बाहर काफी सारे लोग हैं साथ में, विश्वामित्र वाल्मीकि भी आते हैं, और वो वाल्मीकि जब आते हैं तो फिर राम उनकी तरफ देखने लगते हैं सीता जी की तरफ, मतलब दोबारा फिर परीक्षा दो, आप फिर कुछ सालों तक रह के आए हो जंगल में। ये बात सीता जी को जो है वो बिल्कुल वो नहीं होता, टॉलरेट नहीं होता। तब तक वाल्मीकि आगे आते हैं, वाल्मीकि कहते हैं मैंने अपने जीवन में जो तपस्या करी है, जो मेरा वो है साधुता है, अगर वो सत्य है तो ये सीता अग्नि की तरह पवित्र है। बहुत सारी बातें बोलते हैं राम को, वट कहते हैं बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी राम, तो फिर सीता जी कहती हैं कि अगर मैंने अपने वचन से, कर्म से या किसी भी तरह से मैंने सपने में भी राम के अतिरिक्त अगर किसी को उन्हें किया तो पृथ्वी देवी आप मुझे स्थान दे दो। और पृथ्वी फट जाती है, पृथ्वी फट जाती है, उसमें से एक सिंहासन आता है, गोल्डन सिंहासन निकलता है, और इसके ऊपर भूमि देवी स्वयं आती हैं और सीता को पकड़ के गले लगा के बिठा देती हैं, और वो गोल्डन थ्रोन जो है बिल्कुल नीचे चला जाता है, पृथ्वी बिल्कुल मिल जाता है, सबके सामने हो रहा है, जितनी प्रजा थी सबके सामने। और अब राम को बड़ा रोष आता है कि भूमि देवी पर बहुत रोष करते हैं कि तुमने मेरी सीता को ले लिया, वापस करो, मैं सीता के बिना रह नहीं सकता। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं और उनको समझाते हैं कि आपने इतना इतना बड़ा उनके साथ ऐसा किया है, और वो वापस लौट चुकी हैं धाम, आप का भी अब समय आ गया है। तो उसके बाद जो है फिर वो भगवान थोड़ा शांत होते हैं। इस तरह से जो आप देखिए कि इतने बड़े उसमें सीता जी ने कभी इतने कष्ट और दुख होने के बावजूद भी अपने बच्चों को कभी अपने पिता के खिलाफ नहीं भड़काया कि ये गलत है, कभी राम के शब्द के खिलाफ, राम के खिलाफ एक शब्द का प्रयोग नहीं किया कि आपने गलत किया है, मेरी तरफ से गलत किया, स्वयं दुख को सह लिया, लेकिन उस समर्पण का ऐसा भाव था उन्होंने कभी ये प्रकट नहीं होने दिया कि आपने जो है इतना बड़ा मतलब उनको अब टॉर्चर किया एक तरह से समझ लीजिए सीता जी को। उन्होंने ये बात कभी राम से नहीं कही कि आपने इस, और वो जो समर्पण है राम के लिए उनके प्रति, सीता जी का जो समर्पण है राम के लिए, ये समर्पण की पराकाष्ठा है एक्चुअली में। तो हम आज के दिन सीता जी से प्रे कर सकते हैं कि वो समर्पण का, कि थोड़ा सा भी वो समर्पण हमारे हमारे अंदर राम के लिए हो जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री सीता नवमी महा महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। समय नहीं है इसीलिए क्वेश्चन के लिए 9:15 बज गए हैं, क्षमा करिएगा देर करने में। हरे कृष्ण।